ணமோரிஹந்தாணம் நமோ சித்தாணம் நமோ ஆயிரியாணம் நமோ வஜ்ஜாயாணம் நமோ சந்தப்தோத்தம காஞ்சன க்ஷிதிதர ஸ்ரீஸ்பர்தி கௌரத்யுதே புன்ஸாந் த்வச்சரண பிரணாம கரணாத் பீடாஹ ப்ரயாந்தி க்ஷயம் உத்யத் பாஸ்கர விஸ்புரத் கர்ஷத வ்யாகாத நிஷ்காசிதா நானா தேஹி விலோச்சனத்யுதிஹரா சீக்ரம் யதா ஷர்வரி. शांतिष्टक के तीसरे काव्य में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, त्वचरण प्रणाम करणात् आपके दोनों चरणों में प्रणाम करने से, पुंसाम पीडाह जीवों की पीड़ाएं क्षयम प्रयांति क्षय को प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात आपके चरणों में प्रणाम करने मात्र से जीवों की पीड़ाएं शांत हो जाती है, क्षय को प्राप्त हो जाती है अर्थात नष्ट हो जाती है. शांत होने में और नष्ट होने में थोड़ा सा फर्क है. जो चीज शांत हुई है वो संयोगवश पुनः अशांत हो सकती है, लेकिन जो चीज नष्ट हो चुकी है वो तो समाप्त हो जाती है, उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाता. यहां आचार्य कहते हैं, भगवान को देखिए कितना सुंदर संबोधन दिया. संतप्तोत्तम, संतप्त भली भांति तपे हुए, उत्तम कांचन श्रेष्ठ सुवर्ण, मैं क्षितिधर, क्षिति का अर्थ धरती पृथ्वी, वसुंधरा वसुधा, और जितने भी पृथ्वीवाचक शब्द हैं उनके साथ यदि धर जोड़ दिया जाए तो वो पर्वतवाचक शब्द बन जाता है. तो क्षिति एक शब्द है, पृथ्वीवाचक है, उसमें धर शब्द जुड़ा है तो क्षितिधर पर्वत हो गया. तो तपे हुए उत्तम स्वर्ण जैसा पर्वत सुमेरु पर्वत है, उसकी जो श्री है अर्थात शोभा है, उसके साथ स्पर्धी स्पर्धा करने वाली गौरद्युति है जिनकी, अर्थात उज्ज्वल कांति है जिनकी, शांतिनाद भगवान सुनहरे शरीर वाले थे, तो उनका जो तेज था उनकी जो कांति थी वो सुमेरु पर्वत की शोभा से स्पर्धा करने वाली कांति थी, अर्थात भगवान की कांति के सामने सुमेरु की कांति फीकी पड़ जाए, लज्जित हो जाए। ऐसे हे शांतिनाथ प्रभु, मनुष्यों की पीड़ाएं आपके चरणों में प्रणाम करने से क्षय को प्राप्त हो जाती है। एक सुंदर दृष्टांत दिया, किसके समान। तो आचार्य कहते हैं, यथा नाना देही विलोचन द्युतिहरा शर्वरी उद्यत भास्कर विस्फुरत करशत व्याघात निष्कासिता सती शीघ्रम क्षयम प्रयाति। ये अध्याहार करना होता है। कई बार कुछ शब्द छंद में नहीं होते, लेकिन दृष्टांत दार्ष्टांत में से कुछ पंक्तियों को अध्याहृत करके वो अर्थ प्रकट होते हैं। तो यहां पर भी वैसे ही है कि विभिन्न प्राणियों के लोचनों की, आंखों की ज्योत को हरने वाली शर्वरी रात्रि, रात उद्यत भास्कर विस्फुरत करशत व्याघात निष्कासिता। उद्यत यानी उदय को प्राप्त होते हुए, भास्कर यानी सूर्य, और उसके विस्फुरत करशत व्याघात प्रकाशमान सैकड़ों किरणों के व्याघात से निष्कासिता सती क्षयम प्रयाति। यानी सूर्य किरणों के आघात से वह अंधेरी रात निष्कासित हो जाती है और निष्कासित होती हुई विनाश को प्राप्त हो जाती है, रात्रि नष्ट हो जाती है और दिन प्रकट होता है। उसी प्रकार मनुष्यों की पीड़ाएं आपके चरणों में प्रणाम करने से नष्ट हो जाती है और पीड़ा मुक्त हो जाते हैं। अब इसमें जिज्ञासाएं तो उत्पन्न होती है। उन्होंने जब स्तुति की थी तब तो उन्होंने भक्ति में तल्लीन होकर के सूत्र रचना कर दी और इन शब्दों के सारे अर्थ, सारे भाव, सारे रहस्य और सारा तत्व ज्ञान उनके हृदय में भरा हुआ था, क्योंकि वो तो ज्ञान के भंडार थे और उनका ज्ञान भक्ति में आड़े नहीं आ रहा था। लेकिन जब उनकी पंक्तियों का अर्थ करते समय या सुनते समय अपनी बुद्धि खलबली मचाती है, तब उसका समाधान करने के लिए कुछ विवेचन व्याख्या अपेक्षित होती है। जैसे यहां पर प्रणाम करने मात्र से पीड़ाएं नष्ट हो जाती है, ये बात बहुतों के अनुभव में नहीं आई होगी, इसलिए इस पर अनायास विश्वास नहीं बैठता। ऐसा लगता है कि ये तो सब भक्ति की भाषा है, अलंकार है, बढ़ा चढ़ा करके सब भगवान का गुणगान चल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई प्रणाम करे और उसकी पीड़ाएं चली जाए? बरसों तक औषध लेने के बाद भी पीड़ा शांत नहीं होती, वो भगवान को एक बार प्रणाम करने मात्र से कैसे नष्ट हो सकती है? ऐसी शंकाएं उत्पन्न होती है। और फिर जो शरीर विज्ञान के जानकार है और जो व्याधियों से परिचित है कि किस व्याधि से कितनी इंटेंसिटी का पेन होता है, अर्थात कितनी तीव्र वेदना होती है, इसके जो जानकार है और पीड़ा को नापने के भी कुछ यूनिट्स है, कुछ ऐसी इकाइयां हैं, यानी जैसे प्रसूति की पीड़ा है, जैसे शिरशूल की पीड़ा है, जैसे कर्णशूल की पीड़ा है, जैसे उदरशूल की पीड़ा है, नेत्रशूल की पीड़ा है, ऐसे विभिन्न तीव्र वेदना उत्पन्न करने वाले जो रोग है उनकी पीड़ाओं को आज नापा जा सकता है। और इतनी तीव्र पीड़ाएं प्रणाम करने मात्र से शांत हो सकती है, ये बात अजीब सी लगती है। फिर ऐसा भी एक समाधान देता है मन, एक समझौतावादी मन, कि भाई चलो अपनी श्रद्धा भी दूषित ना हो और अपना मन भी अपना काम करता रहे, तो वो ये रास्ता निकाल लेता है कि चलो ठीक है, ये सब चीजें आजकल तो नहीं होती लेकिन कभी हुआ करती थी। उस समय लोग भी पवित्र थे, उनकी भक्ति भी बड़ी अटूट थी और खान पान भी अच्छा था, रहन सहन भी मर्यादित था, सब कुछ एक जमाना था। ऐसा एक रास्ता निकाल करके लोग स्वीकार करते हैं कि चलो ठीक है, ये पंक्ति सही लिखी, पर सत्य इससे कुछ भिन्न है। क्योंकि जिस काल में आचार्य महाराज ने ये बात लिखी है उस काल में भी सबकी भक्ति में चमत्कार नहीं होता था। सबके नमस्कार में चमत्कार नहीं होता था। एक समंतभद्र स्वामी हो गए जिन्होंने नमस्कार किया और वहां से प्रभु की छवि प्रकट हो गई। ऐसे कितने उदाहरण मिलते हैं। बहुत दुर्लभ है वो भक्ति जो सरल प्रतीत होती है, वो सरलता के बिना सरल नहीं है। जब तक हृदय बालक जैसा निर्मल और निष्कपट नहीं हो जाता तब तक भक्ति की वो निर्मलता असंभव है। जब तक अपन छोटे और अपने आराध्य बड़े नहीं हो जाते, वैसे तो मोटे रूप से सब लोग मानते हैं कि भगवान बड़े हैं, लेकिन तो भी कुछ ज्ञान की ऐसी खुजलाहट है जो किसी एक दूसरे नए को इस भक्ति के प्रसंग में प्रविष्ट कराकर कहती है कि नहीं, जो मैं हूं वह है भगवान, मुझ में और भगवान में कोई फर्क नहीं, सिर्फ अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। ठीक है, ये किसी नए से जिस कवि ने लिखा है वो असत्य नहीं है, लेकिन प्रसंग का ध्यान देना, प्रसंग पर ध्यान देना अपेक्षित है। अगर भक्ति के प्रसंग में अपन अपनी आत्मा को निश्चय से परमात्मा है इस पर फोकस करेंगे, इस पर ध्यान देंगे, तो फिर भक्ति संभव ही नहीं है। यहां पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो भक्ति की है उसको अपन एक बार सुनकर तो देखें कि उन्होंने किन शब्दों में भक्ति की है। पहले हमें लगता था कि इसमें तो सिर्फ भगवान के चरणों की बार बार भक्ति करते चले जा रहे हैं और क्या है, इसमें प्रणाम करने की बात कर दी यहां पर, उसके पहले स्तुति के अभिमुख होने की बात कही, उसके पहले पीड़ित होकर भगवान के चरणों की शरण में आने की बात कही और आगे भी कुछ इसी प्रकार की स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसा लगा कि इसमें कोई द्रव्यान योग की आह्लादकारक चर्चा समझ में नहीं आती, लेकिन उसके बाद जब कुछ मान को शांत करके विचार किया तब पता चला कि स्तुति के जो कर्ता है उन्हीं ने समाधि तंत्र की भी रचना की है। जिस समाधि तंत्र के कुछ ऐसे काव्य हैं जिनका अर्थ वर्तमान में इस पृथ्वी पर करने वाले, उसका अर्थ निकालने वाले उंगलियों पर गिनने योग्य है। जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि की रचना की, और कितने बड़े विद्वान थे उसका वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि जब उनकी विद्वत्ता पर हमारा ध्यान जाता है तब ऐसा लगता है कि अभी अपन तो केजी की पढ़ाई कर रहे हैं, वो इतने बड़े प्रोफेसर हैं, तो उनके सामने अपन उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। तो इतने छोटे होकर इतने बड़े गुरु की इस भक्ति के विषय में कुछ मीमांसा करने का अधिकार अपने को नहीं है, ऐसा प्रतीत होने लगा जब उनकी महानता पर दृष्टि गई। और उसके बाद फिर लगा कि नहीं, उनके स्तोत्र का एक एक पद, यानी एक एक काव्य, और उस काव्य में भी एक एक पद यानी उसका चरण, और उस चरण में भी एक एक पद यानी उसका एक क्रिया पद। पद शब्द के कितने अर्थ हैं, और उस पद में भी एक एक शब्द और अक्षर बहुत महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि 1500 वर्षों से आज तक मात्र इन 8 काव्यों का पाठ करने वाले अनेक लोगों को नेत्र व्याधियों से मुक्ति मिली है, उसके आज तक उदाहरण उपलब्ध है। इतना अद्भुत स्तोत्र है यह। तो जैसे रात सूर्योदय से नष्ट हो जाती है, वैसे ही भक्ति के उदय से पीड़ाएं नष्ट हो जाती है। भक्ति का उदय होता है तो ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। अभिमान का उदय ऐसे होता है, अकड़कर। भक्ति सिकुड़ना सिखलाती है, अभिमान अकड़ना सिखाता है। सिकुड़ते ही पीड़ाएं भाग जाती हैं, अकड़ने से पीड़ाएं जकड़ कर पकड़ लेती हैं। भक्ति दुर्लभ है। इस काव्य का पद्यानुवाद है मंदर गिरी से सुंदर प्रभु तव चरणों में जो नमन करे उनकी सारी पीड़ाओं को शीघ्र तयावह नमन हरे निशा भले जग की आँखों में अंधकार फैलाती है उगते रवि की प्रभा निशा को पल में दूर भगाती है जय जय शांति नाथ स्वामी जय जय शांतिनाथ स्वामी जय जय शांतिनाथ स्वामी जय जय शांतिनाथ स्वामी, जय जय शांतिनाथ स्वामी। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।